नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। बालिका शिक्षा, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में एक अमूल्य योगदान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। शिक्षकों के कठिन परिश्रम और समर्पण से राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम और ईद उल मिलाद की दी बधाई। 27वां सरस आजीविका मेला आज से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बांग्लादेश सीमा से हो रहे अवैध प्रवास और घुसपैठ को रोकने के लिए राज्य में इन लाइन परमिट तेजी से लागू करने का अनुरोध किया है। गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेट अलर्ट जारी। राजस्थान, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विकास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका देने का सबसे प्रभावी उपाय यह है कि बेटियों को सर्वोत्तम शिक्षा दी जाए। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में एक अमूल्य योगदान है। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रसन्नता व्यक्त की कि हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा में दाखिले में बालिकाओं की संख्या बढ़ी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से कमजोर वर्गों के बच्चों का सशक्तिकरण होता है और उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की मर्यादा और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को सुलभ और स्कूल स्तर पर सरल बनाने पर विशेष बल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मस्तिष्क को पोषित करने के लिए शिक्षकों का समर्पण एक मजबूत और उज्ज्वल भविष्य की नींव है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और करुणा महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने प्रख्यात विद्वान और शिक्षक डॉ एस राधाकृष्णन की जयंती पर उनके जीवन और विचारों को भी याद किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को पूरी क्षमता के अनुसार खेलने में मदद कर रहे सभी गुरुओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शिक्षकों के कठिन परिश्रम और समर्पण से उत्कृष्टता को बढ़ावा मिला है, जिंदगियां रोशन हुई है और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिला है। श्री प्रधान ने कहा कि शिक्षक केवल पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि शिक्षक राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जगाने का काम भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक अंग्रेजी अखबार में छपे लेख को साझा किया। इस लेख में श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आत्मनिर्भरता और विकास की यात्रा की दूरी बताया है। श्री प्रधान ने कहा कि आज शिक्षक प्रधानमंत्री ई विद्या, दीक्षा और स्वयं का उपयोग कर डिजिटल कक्षाओं, यांत्रिक मेधा, बदलते पाठ्यक्रम और विविध शिक्षा आवश्यकताओं को तेजी से अपना रहे हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद की 1500वीं जयंती होने के कारण आज का दिन बहुत खास बन गया है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। आज इस अवसर पर मिलाद महफिलें तथा सीरत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षा को दर्शाया जा रहा है। दुनिया भर में रह रहे केरल मूल के लोग आज तिरुओणम मना रहे हैं। ये केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है जो राजा महाबली की गर्वापसी का प्रतीक है। यह उत्सव सभी समुदाय में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। श्रद्धालुओं ने आज सबरीमाला, गुरुवायूर और त्रिकारा सहित प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। ओणम महोत्सव मंगलवार तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम और ईद उल मिलाद की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम केरल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा का अनूठा उदाहरण है और यह पर्व सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों के अतिरिक्त एकता, सहयोग और भाईचारे के महत्व को बताता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ओणम देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ओणम पर सबके लिए खुशी, अच्छे स्वस्थ और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार आशा और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह पर्व समाज में भाईचारे और प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव को मजबूत करेगा। 27वां सरस आजीविका मेला आज से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हो गया है। देश भर के राज्यों से स्व सहायता समूहों से जुड़ी 400 से अधिक ग्रामीण महिलाएं इस मेले में भाग ले रही है। इस वर्ष के मेले का विषय है लखपति दीदियों का निर्माण, सफल उद्यमी और वोकल फॉर लोकल की चैंपियन बनने के लिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। मेले का नेतृत्व लखपति दीदिया कर रही हैं, जहां उनके हस्तशिल्प हथकरघा और खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह मेला इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। पट्टन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज तमिलनाडु के टूटीकोरिन में चिदंबरनार बंदरगाह में हरित हाइड्रोजन प्रायोगिक संयंत्र और कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 69 करोड़ रुपए की लागत के 7.4 हेक्टेयर तक फैले 10वें कंटेनर टर्मिनल, 110 किलोवाट के सबस्टेशन और 6 मेगावाट की पवन ऊर्जा सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि पोर्ट परिवहन उद्योग बंदरगाह विकास पहलों के माध्यम से व्यापक विकास का साक्षी बन रहा है। उन्होंने तटीय समुदाय विकास योजना का भी उल्लेख किया। ये योजना राज्य के तटीय क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को समर्थन देने के लिए कार्यान्वित की गई है। यह आयोजन स्वतंत्रता सेनानी वीओ चिदंबरनार की जयंती पर किया गया। चिदंबरनार को कपल ओठिया टमीजहन भी कहा जाता है। 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा कार्यदल की बैठक कल सिंगापुर में हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग पर संतुष्टि व्यक्त की और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों, खासकर प्रशिक्षण, उद्योग और प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग के दायरे को बढ़ाने पर चर्चा की। इसने बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और सिंगापुर रक्षा मंत्रालय के नीति कार्यालय के निदेशक कर्नल डेक्सन याप ने की। भारत ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हाल के प्रयासों का स्वागत किया है और कहा है कि इस समस्या का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। हालांकि भारत ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी सहित युद्ध के अन्य परिणामों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछड़े देशों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा के दौरान युद्ध समाप्ति के लिए हर प्रयास के प्रति समर्पण व्यक्त किया। उन्होंने 15 अगस्त को अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में हुई प्रगति की सराहना की और कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान के प्रायोजन से कूटनीतिक प्रयास के लिए तैयार है। श्री हरीश ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूरोपीय नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की चर्चा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की ईमानदार प्रयास से ही टिकाऊ शांति आ सकती है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बांग्लादेश सीमा से हो रहे अवैध प्रवास और घुसपैठ को रोकने के लिए राज्य में इनरलाइन परमिट तेजी से लागू करने का अनुरोध किया है। श्री संगमा ने कल नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत पर बल दिया। आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटी इलाकों सहित देश के कई हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, बिहार, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में तेज हवा और गर्ज के साथ बूंदाबूंदी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से राज्य के 1009 से अधिक गांव प्रभावित हैं और 4,00,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर फसलें जलमग्न हो गई है। पंजाब में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। जमीनी स्थिति का जायजा लेने पंजाब पहुंचे कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार पंजाब को इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष के अंतर्गत पंजाब के पास पहले से ही धनराशि मौजूद है। 2 केंद्रीय दल क्षति का आकलन कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसदों ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए अपने सांसद निधि कोष का उपयोग करने की घोषणा की है। भारतीय सेना, बीएसएफ, एनटीआरएफ और राज्य पुलिस के दलों के साथ आम जनता भी फंसे हुए लोगों को निकालने और बांधों को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।